सूरत अल हाका 52 आयतें हैं, मक्की सूरत है। इसके 7 डिफरेंट टॉपिक हैं। पहला आयत 1 से 3 तक क़यामत से डराया गया। आयत नंबर 4 से 12 तारीख खिलाकत है, कौम आद, समूद, फिरौन और कौम लूत और कौम नूह का अंजाम है इसमें। आयत 18 से 13 में क़यामत के मनाजिर हैं। 19 से 24 में नेक लोगों का अच्छा अंजाम है। 25 से 37 में बुरे लोगों के अमाल नामे और उनका इंजाम, और 38 से 51 में कुरान का तारुफ़ कि कुरान क्या है और क्या नहीं है, और फिर आखिर में आयत 52 में अल्लाह ताला के बेऐब होने का एतराफ़, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में गौर करने की बजाय अगर उसकी कायनात के बारे में गौर करो तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पूरी सूरत जो है कुरान पर ईमान लाकर अच्छे काम करो, ये है इसका थीम। सीधे हाथ में नामे अमाल मिले, खुश हो जाएं। और सूरत अल हाका सूरत तूर के 7 के दौर में नाजिल हुई, जब ऐलान हो चुका था, और मक्का के क़याम के दूसरे दौर में यानी 4 से 5 नबी में नाजिल हुई थी। आप पर इल्ज़ामात थे, शायर, काहिन और इस तरह। आपके बारे में लोग कहते थे कि आप अपनी मर्ज़ी से ये सारी बातें करते हैं, अल्लाह नहीं कहता आपको। और हज़रत उमर के दिल में सूरत अल हाका की आयत ने वो असर डाला कि इसके बाद फिर ज़ुबान पे कलमा कब आया, जब बहन की ज़ुबान से सूरत तौहा सुनी। अल्लाह ताला में इससे फ़ायदा उठाने वाला बनाए। कुरान पाक में क़यामत का जितना तस्करा है 29वें और 30वें पारे में से उसका 98% है। आप कह सकते हैं कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा क़यामत का तस्करा 29वें और 30वें पारे में है। क्यों? आप नोट कर रहे हैं, शायद आपने किया कि नहीं, एक दो सूरतों के अलावा, जैसे 26वें पारे में सूरत मोहम्मद थी या फिर बीच में थी, अब हुक्म नहीं आ रहे। अब क्या आ रहा है? अपना ईमान बिल आखिर अब मज़बूत करो, क्योंकि जितना भी कोई आपके ऊपर इल्म डेल देगा ना, आपको फ़ायदा तब होगा जब आपका दिल गवाही देगा कि मैंने इस दुनिया से जाना है, और जो नेकी आज करूंगी कल मैं उसको देखूंगी, और जो नेकी छोड़ूंगी कल उसकी हसरत करूंगी, और जो गुनाह करूंगी ना हर गुनाह मेरे लिए बबाल होगा। फिर आप फील करेंगे कि वाकई अल्लाह ताला ने आपके लिए जो नेकियों के मौके रखे हैं वो बड़े यूनिक हैं। अदरवाइज़ बातों को सुनते ही जाना, अहकामात पे अहकामात लाते जाना, इससे बात नहीं बनती। क़यामत के नामों में से एक नाम है सूरत अल हक्का, हक होने वाली, हो जाएगी। जो काम आज कहा जा रहा है कल ये होगा, आप इमेजिन तो करें। कोई कहता है जी जलजला आने वाला है, आ जाता है। कोई कहता है तूफ़ान आने वाला है, फिर आ जाता है। कोई कहता है कि कैटरीना आ रहा है, तो आ जाता है ना। और जिस वक्त वो आता है तो लोगों की जो तस्वीरें फिर मीडिया पे आती है, और जो उनका वहाँ तड़पना और घूमना और हल परेशान होना होता है, आप ज़रा इस वक्त तसव्वुर की आंख से ख़ुद को और क़यामत को सोचें कि जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन मेरा क्या हाल होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हक तुम अल हक, और वो हक होने वाली, और क्या है वो हक होने वाली, यानी होनी शुतनी, और क्या है वो होनी शुतनी, और तुम क्या जानो कि वो क्या है होनी शुतनी। समूद और आद ने इस अचानक टूट पड़ने वाली आफत को छुटलाया, तो समूद एक सख्त हादसे से हलाक कर दिए गए और आद एक शदीद तूफ़ानी आंधी से तबाह कर दिए गए। अल्लाह ने इनको मुसलसल 7 रात और 8 दिन इन पर मुसल्लत रखा। तुम वहाँ होते तो देखते, वो वहाँ इस तरह पछड़े पड़े हैं जैसे खजूर के बुसीदा तने हों। अब क्या उनमें से कभी तुम्हें कोई बाकी नज़र आता है? यानी कभी आप रोड्स पर हों और आपको कौम आद का कोई शख्स दिखे, कोई समूद का कोई शख्स दिखे? नहीं दिखता। फ़हल तरा लहुम मिन बाकिया? नहीं आते। और याद रखे, जब अल्लाह की पकड़ आती है ना किसी कौम पे, तो वो बिल्कुल अपनी सारी चीज़ों के नाते से नीस्तो नाबूद हो जाते हैं। कोई कितना ही अपने आप को बड़ा कह दे, लेकिन अल्लाह ताला उनको नीस्तो नाबूद करता है। पिछली कौमों के जो किस्से हमने कुरान में बार बार पढ़े हैं ना, ये क़यामत सुग़रा की अलामतें हैं। आप इमेजिन करें ना कि जिस कौम पे ये अजाब आता था उस वक्त उनको क्या पता था कि बाद में 2016-17 भी आना है। वो तो कहते होंगे ख़त्म हो गया सब कुछ, सब मिट मटा गए। ये तो अल्लाह बार बार दुनिया को मटाता और बनाता रहा ताकि लोगों को क़यामत के बाद दोबारा और जी उठने का यकीन आ जाए। तो मेरे आपके लिए इसमें बहुत बड़ी बात है कि आज अमल का वक्त है, आज तौबा का वक्त है, आज अपनी कमियों को दूर करने का वक्त है, हकीकत ये कि आज अगर मैं और आप अपनी इन चंद दिनों की ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा ले लें तो कल की हसरतों से बच जाएंगे, कल की उन परेशानियों से बच जाएंगे जो आज आपके मेरे हाथ में कि हम उसका इलाज कर सकें। फिर आगे एक और कौम का तذکرہ कर दिया, और वो कौन? फिरौन। फरमाया वजा फिरौन व मन क़ब्लहु वल मुत्तफ़िकातु बिल ख़ातिया। फिर फिरौन आया और वो बस्तियाँ जिनको उल्टा कर दिया गया, यानी कौम लूत की तरफ इशारा है। फरमाया और इसी अजीम ख़ता का इर्तकाब फिरौन और इसके पहले के लोगों ने और तलपट हो जाने वाली बस्तियों ने किया। इन सब ने अपने रसूलों की बात ना मानी, तो इसने इनको बड़ी सख्ती के साथ आग पकड़ा। ज़रा इमेजिन करिएगा इस आयत को, सबका एक कॉमन सिन, रसूल की नाफरमानी। आज तो नहीं होती, आज तो लोग नहीं करते रसूल की नाफरमानियाँ। या फिर हर एक खुद से पूछे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। याद रखिए कि ये नबी सल्लम की दुआ है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने अल्लाह ताला से तीन दुआएं मांगी थी। उनमें से एक ये दुआ थी कि अल्लाह मेरी कौम किसी इज्तमाई हलाकत का शिकार ना हो, यानी जैसे पिछली कौमों पे अजाब आए तो एक से एक करके दुनिया से चलते गए, अल्लाह ताला मेरी कौम के साथ ऐसा ना हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपकी ये दुआ कबूल की जाती है कि आपकी कौम पर छोटे छोटे अजाब तो आएंगे लेकिन पूरी कौम एक ही वक्त में इकट्ठी की इकट्ठी तबाह नहीं की जाएगी। तो ये वो चीज़ है कि जो आज बहुत सारे गुनाहों के बावजूद हमें बचा रही है। जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं और आप कहते हैं अच्छा कौम शुएब सिर्फ नाप तोल में कमी करती थी फिर अजाब आ गया, अच्छा कौम लूत क्या हुआ बेचारे होमोसेक्सुअल थे अजाब आ गया। एक गलती भी बहुत बड़ी चीज़ है, एक नाफरमानी इतनी बड़ी ज़ात की कर ले इंसान तो उसमें भी इंसान को कहाँ चैन पड़े। लेकिन आप सोचिए कि आज हमारे अंदर जो पिछली सारी कौमों की बातें दिखती हैं, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़जल और रहम है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन मुझे आपको इससे कोई प्रिविलेज नहीं लेनी बल्कि तौबा करनी है। फिर फरमाया जब पानी का तूफ़ान हद से गुजर गया तो हमने तुमको कश्ती पर सवार कर दिया, तुमको ऐसे लग रहे हम खड़े हैं वहाँ, इशारा किस कश्ती नूह की तरफ है, ताकि इस वाक़े को तुम्हारे लिए एक सबक आमोज यादगार बना दें और याद रखने वाले कान इसकी याद महफूज रखें। कितने सौ साल पुरानी बात है, किसी को तारीख भी नहीं पता कि तूफ़ान नूह कब आया, लेकिन क्या आपको मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि आजकल की बात है? ये तो होके रहेगी, तो होने वाली बात है। क्या पता चला कि जब अल्लाह ताला कोई मामला लाता है तो उसको याद रखने के लिए कोई मेमोरियल डे की ज़रूरत नहीं होती, वो अल्लाह के हुक्म से जहनों में महफूज हो जाता है। इसी तरह क़यामत, बिल्कुल आज पूरा वक्त अपने आप को आप मैदाने हशर में देखिए और अपने आप से कहिए कि मैं वहाँ अब खड़ी हूँ, कि जब आप यहाँ से उठ के जाए ना तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हो कि नहीं नहीं अभी क़यामत नहीं आई, अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मेरे पास मौका है। ठीक है, तो अब यहाँ बार बार ये सूरतों में आना है, इसलिए मैं आपकी खसूसी तवज्जो इस पे चाहूँगी। फैज़ा नफ़ीख़ा फ़ि सूरी नफ़खतुन वाहिदा, फिर जब एक दफ़ा सूर में फूंक मार दी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिया जाएगा, इस रोज़ वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा। इस दिन आसमान फटेगा और इसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी, फरिश्ते इसके इतराफ़ और जवानिब में होंगे और आठ फरिश्ते उस रोज़ तेरे रब का अर्श अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। ये सब तो चले ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डराने वाली बात, यौम इज़िन तुरदून अला तख्फा मिनकुम खाफिया, ये है वो चीज़ें जो हमारे होश गुम कर दे। वो दिन होगा जब तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज भी छुपा न रह जाएगा। आज दुनिया में अगर हमारे राज फाश हो जाए, आज लोगों को हमारी खराबियों का पता लग जाए, आज हमारी कमी बेशियाँ खुल के सामने आ जाए, क्या बनेगा उस दिन? आप देखिए आसमानों आसमीन जो है ना यूं चल रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, जैसे आप अगर ये समझते हैं जो वर्ड स्पिनिंग, तेज़ चलती हुई गाड़ी को अगर एकदम ब्रेक लगाए ना चिर चिर की आवाज़ आती है, इस तरह के धमाके होंगे क़यामत के वक्त में। ये तेज़ी से सब चलती हुई गाड़ियों को रोका जाएगा, रुको रुको रुको। और उसके बाद हजरत इंसान के दिल पर क्या होगी, दुनिया में तो पता नहीं लोग क्या कहते रहे, असल खुलेगी उस दिन। फम मन उतिया किताब हू बी यमीन ही फ़यकूलु हाउ मुकरऊ किताबिया, उस वक्त जिसका नाम है अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा लो पढ़ लो मेरा नाम है अमाल, मैं समझता था मुझे ज़रूर हिसाब मिलने वाला है। उस स्टूडेंट की तरह जिसको रिपोर्ट मिले और वो फर्स्ट हो, तो बच्चे हाथ में यूं पकड़ कर लाते हैं और चेहरे पे एक स्माइल होती है और मुतवक्को होते हैं कि माँ पूछेगी क्या हुआ और बताएंगे कि हाउ मुकरऊ किताबिया। ज़रा अपनी रिपोर्ट पकड़ें, यानी आप एक कागज़ का टुकड़ा लें और इसको समझें, मसलन ये पेपर है ना, आप बोलें ये मेरा नामे आमाल है, क्या क़यामत के दिन इसको यूं करके दिखाऊंगी, लुक एट, देखिए मेरे पेपर्स, ये मेरे नंबर, ये कैसे थे, ये वैसे थे। लोग पूछेंगे क्यों भाई, क्या नेकी कर ली? जवाब सुन लीजिए, बस एक जुमला है, ओनली वन वर्ड, क्योंकि जिनको अमल करना होता है ना वो बातें नहीं करते, वक्त ही कोई नहीं होता बातें करने का, बहुत बड़े बड़े दावों का तो वक्त नहीं, वो तो मौके के मुंतजर हैं, मौका पड़ा चल पड़ते हैं और वो काम ले लेते हैं जो उनको अल्लाह ताला दे देता है। यही बात यहाँ करके बता दी, इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, बेशक मैं तो गुमान करता था कि मुझे मेरा हिसाब मिलना है। ओनली वन परसेप्शन ठीक कर ले कि मैंने अपने हिसाब से मुलाकात करनी है, बस। आगे इंजाम सुन लीजिए, फहुवा फ़ी ईशत रवादिया, वो तो दिल पसंद ज़िंदगी में होगा, फ़ी जन्नत आलिया कुतूफुहा दानिया, आली मुकाम जन्नत बुलंद जन्नतें, जिसके फलों के गुच्छे झुके के झुके पड़ रहे होंगे, ऐसे लोगों से कहा जाएगा मज़े से खाओ और पियो अपने इन आमाल के बदले जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए। ज़रा सोचिए क्या करते हैं हम अमल जो वहाँ देखेंगे, क़यामत के दिन जब इंसान के सामने उसका नामे अमाल खुलेगा ना, तो वो उस वक़्त हसरत का शिकार होगा, कौन जिसने अमल नहीं किए, और जिसको अपने किए हुए अमल दिखेंगे, क्या यहाँ ये लिखा है कि जो तुमने दुआएं की थी ले लो, ये जो तुमने ख्वाहिशें की थी ले लो, दुआओं से और ख्वाहिशों से जन्नत नहीं मिलती, अमल से मिलती है। इसी को कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। चलिए आप और मैं ज़रा अपने ऊपर लेते हैं, क्या हम ऐसे खुशकिस्मत होंगे कि लोगों को उस दिन अपना नामे अमाल दिखाना चाहेंगे? ज़रा सोचिए, मेरी रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में है, मेरा सर्टिफिकेट मेरे पास है, दुनिया में बहुत शौक होता है सर्टिफिकेट्स लेने का, डिग्रीज, किसी भी फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को जेहन में लाइए, अखबारों में खबर छपती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर लोग उनसे पूछते, अच्छा बताइए आप कैसे पढ़ते थे, आपने कैसे इतनी मेहनत कर ली, आप क्या करते थे, और वो एक बात कहेगा, इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। इसके बरक्स एक और किरदार है, वम मनूत या किताब बहू बिशिमाली ही, और जिसका नामे अमल इसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, काश मेरा अमालनामा मुझे ना दिया गया होता, या लैतनी लमअदरी मा हिसाबिया, काश मैं अपना हिसाब ना जानता, काश मुझे मेरा हिसाब ना मिलता, या लैतहा कानतिल क़ादिया, काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी वो फैसला कुन होती, यानी मरने के बाद दोबारा ना उठा दिया जाता, माग़नानी मालिया, मेरा तो माल भी आज मेरे काम ना आया, हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा तो सारा इक्तदार ख़त्म हो गया। ज़रा वहाँ बैठकर सोचिए, वो सब कुछ जो दुनिया में था, इतनी सल्तनत, इतना बड़ा घर, इतना माल, इतनी बैंक की ट्रांजैक्शंस, वो मेरी जिकुजी मेरे काम ना आई, मेरा बाथरूम मेरे काम ना आया, मेरा बेडरूम मेरे काम ना आया, मेरा बैकयार्ड काम ना आया, वो डिज़ाइनर कपड़े काम ना आए, सब किधर चले गए, सारी ज़िंदगी को जिसमें मर्जी नहाए, एंड पे सब को जाके मैयत को नहलाने वाली जगह पे नहाना है, मर्सिडीज़ पे बैठ जाए कोई, टोयोटा पे बैठ जाए, एलबी पे बैठ जाए, वहाँ तो मैयत गाड़ी पे बैठ के जाना पड़ेगा, सब ख़त्म, किसी का कफन भी ब्रांडेड नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने तो डिज़ाइनर से अपना कफन बनवा के रख लिया, रख भी कोई ले तो जो अंदर है ना उस कफन के, उसकी ताकत है, उसकी कीमत है। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि मैं अपनी सल्तनत बड़ी कर लूँ। अब मेरी आपकी सल्तनत क्या है, कि हम वज़ीर पाकिस्तान तो है नहीं है कि जो हमारी सल्तनत पाकिस्तान हो, हम दुनिया की किसी बड़ी कुव्वत के मालिक तो नहीं है, मेरी सल्तनत मेरा जिस्म ही है, या मेरा घर है, या बच्चे होंगे, या अपनी चीज़ें, बिलोंगिंग्स, सल्तनत बिलोंगिंग्स है, जो मैं बिलोंग करती थी। ज़रा चंद सेकंड के लिए तो सोचें, जो कुछ मैंने जमा किया हुआ है उसमें से क्या मेरे लिए काम आएगा, और क्या चीज़ें मेरे लिए वबाल होंगी। हलक अन्नी सुल्तानी, अब जवाब सुनिए उसका हशर क्या होगा, खुजू फगुल्लुह, हुक्म होगा पकड़ो इसको और इसकी गर्दन में तोक डाल दो, फिर इसे जहन्नुम में झोंक दो, फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ दो। हाथ पता है अरबी में कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई कोनी तक, इसको हाथ कहते हैं। और 70 हाथ की एक कड़ी, यानी ये चेन के अंदर कड़ियाँ होती हैं ना, इस तरह से। क्यों इतना बड़ा जिस्म कहाँ से आएगा? हदीस में आता है कि जहन्नम के अजाब जहन्नमियों के जिस्म में जहर भरेंगे और वो फूल जाएंगे। कभी आपने देखा दुनिया में कोई कीड़ा काटे तो स्किन फूल जाती है? और अल्लाह जहन्नमियों को इतना बड़ा बड़ा बना देगा कि उसके ये कान की जो लो है ना, इधर से लेके कंधे तक का फासला कई हज़ार मील का होगा, चौड़े बड़े, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी संगलियों में बांधना। ये संगली में क्यों बांधा? बड़े खुले फिरते थे, शुतर बेमुहार थे, जो दिल में आया बोल दिया इस्लाम के बारे में, जो खाने को दिल चाह खा लिया, जो पहनने को दिल चाहे पहन लिया, जिधर जाने को दिल चाह चल पड़े, नेकी के नाम पे भी जो दिल चाह बस वो कर दिया। अल्लाह कहते हैं अब ये बहुत खुली छुट्टी बना कर आए हैं, ये बड़ी मौजें करके आए हैं, ये बड़े आज़ाद ख्याल थे, पकड़ो इनको और इनको आज जकड़ो। दुनिया में ख़ुद को जकड़ लेते ना तो आज ना जकड़े जाते। इन्होंने शरीयत की रस्सियों को उतार उतार के फेंक दिया, दीन की धज्जियाँ उड़ा दी, लोगों को खुश करने वाला दीन पेश किया, वेस्ट को खुश करने वाला इस्लाम दिखाया, वेस्टर्न सोसाइटी में पनपने के लिए कितनी अमेंडमेंट्स की अपने दीन में। मुल्कों के कवानीन में तो शायद 3-4 साल बाद की अमेंडमेंट होती है, आपने सुना होगा। आज भी अगर पाकिस्तान के लॉ में बहुत सारी चीज़ें 1971 के अमेंडमेंट की हैं, वो तो कई साल बाद कहते हैं और ज़रा अपने कवानीन को रिवाइज़ कर लें, वक्त के तकाज़ों को देख लें। ये तो वो था कि जिसका दीन हर दूसरे दिन बदलता था, हर नए मुल्क में इसका दीन बदल जाता था, हर नए दौर में हर जगह पे इसका रुख दीन से पलट जाता था। तो आज इसको बांधो, कसूर क्या है? इन्नहु कान ला यूमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ना ये अल्लाह बुजुर्गों बरतर पर ईमान लाता था और ना मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत दिलाता था। खाने तो बहुत खिलाता था अपने जैसों को, बराबरी के लोगों को, जिनसे खाए होते थे उनको खिलाता था, या जिनसे जवाब में उतनी ही भारी दावत की उम्मीद थी उनको खिलाता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज यहाँ ना कोई इसका गम ख्वार दोस्त है, वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और ना जख्मों की धोवन के सिवा इसके लिए कोई खाना है। जख्मों से जो पस और पीप निकलेगी वो पेश की जाएगी, खाइए। दुनिया में भी तो गिबतें कर करके मुर्दा भाई के गोश्त खाते थे ना, आदत तो थी पड़ी हुई, खाओ मौज करो। ला याकुलुहु इल्लल खातियून, जिसे खताकारों के सिवा कोई नहीं खाता। आप देखिए कि मरते ही सबसे पहले जो चीज़ इंसान का साथ छोड़ती है ना, उसका नाम है। कोई आपका मेरा नाम लेकर नहीं कहेगा, एक लफ्ज़ रह जाएगा, बॉडी, मैयत। मैयत को कब दफनाना है, मैयत को कब कफनाना है, मैयत कब आ रही, मैयत को गुसल कब देना है, मैयत मैयत बॉडी मैयत बॉडी। कोई मेरा आपका नाम नहीं लेगा। और कब्र में जाकर फरिश्ते ये नहीं कहेंगे कि हाय प्राइम मिनिस्टर, ओ प्रेसिडेंट, ओ मिस फलां और मिस वर्ल्ड और फलां। वहाँ जाकर तो एक ही बात होगी कि बताओ करके क्या आए हो। इतना संगीन इंजाम बंदे के सामने आने वाला हो, चैन पड़ता है। आपने देखा होगा कि कभी कोई ऑपरेशन होने वाला होता है ना तो खौफ लग जाता है, डॉक्टर पे जाना हो इंजेक्शन लगेगा, खौफ आ जाता है। कभी एयरपोर्ट पे गुजरते हुए वो कहें जी आपका बैग चेक होगा, कुछ भी नहीं है उसमें ज़रूरत की चीज़ों के सिवा, लेकिन दिल उछलेगा, पता नहीं अब अंदर से ये क्या निकाल लेंगे, पता नहीं किस किस चीज़ पर ये कस्टम लगा देंगे। ये दुनिया के छोटे छोटे इम्तिहान मुझे आपको बताते हैं। और बाद जब तुम दूसरों की चीज़ों पर बड़ा करते हैं, शौहर की ज़रा सी जॉब अच्छी होगी हम कहते हैं हम जैसा कौन है, अच्छे कपड़े देकर लोगों को वैल्यूएट करते हैं, अच्छे घर देकर लोगों को रिश्ते देते हैं, उनकी बड़ी गाड़ियों से मरूब होकर अपनी बेटियां उनको पकड़ा देते हैं कि रखो और इनको रखो। लेकिन असल बात क्या है कि वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ इंसान के आमाल काम आएंगे। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की भी जो तुम देखते हो और इनकी भी जिनको तुम नहीं देखते। एक रसूल करीम का कॉल है, किसी शायर का कॉल नहीं, तुम लोकम ही ईमान लाते हो। बला भी कौल इन काहिन कली लम्मा तज़क्करुन, और न ये किसी काहिन का कॉल है, तुम कम ही गौर करते हो। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। ये आयतें जो हज़रत उमर के दिल में ईमान का बीज डाल गई थी, वो तो बहन की ज़ुबान से सूरह तौहा को सुनना एक बहाना बना था। कहते हैं कि अल्लाह के नबी के मुँह से ये आयतें सुनकर मैंने कहा ये शख्स शायर है, इतना खूबसूरत, इतना हुस्न है इसकी आवाज़ में, इतना प्यारा कलाम है। अभी ये सोच ही रहा था नबी सल्लम से ये तिलावत सुनते हुए, तो आपने अगली आयत पढ़ दी, ला भी कौली काहिन का, ये किसी काहिन का कौल नहीं का, इसको तो दिल की बातें पता चल जाती हैं, यानी जो वो सोच रहे हैं उससे अगली आयत में उसका जवाब मिल रहा है। तो आखिर कह दिया, तंजीलों में रब्बिल आलमीन, आज मेरे आपके हाथ में ये किताब है। बड़े प्रोटोकॉल से उतरी, बड़े प्यार से उतरी, रहमान की तरफ से, अर रहमान अल्लमल कुरान। ये अलग बात है, अब हम अपने घर का दरवाज़ा कैसे खोलते हैं इसके लिए। फरमाए वलौ तक़व्वल अलैना बाद अलअक़ाबील, और अगर इस नबी ने खुद घड़कर कोई बात हमारी तरफ मंसूब की होती तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला नहीं था। तो बात यह है कि वह इन्नहु लतज़किरतुल आलमीन, दर हकीकत ये परहेजगार लोगों के लिए एक नसीहत है। तकवा के बगैर कुरान से नसीहत नहीं मिलती, इल्म मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको भी मिल जाएगा, डिग्री मिल जाती है, नसीहत सिर्फ मुत्तकी को मिलती है। तो दोहरा लीजिए कि मुत्तकी कौन है। पहले पारे में पढ़ा था हुदल्लिल मुत्तकीन, तो अब आखिरी पारों में पढ़ लें, ज़रा चेक कर लें कि तकवा आया कि नहीं आया, और मुत्तकी कौन है, जिसमें हिदायत की तलब जाग जाती है, जिसकी भूख जाग जाती है। कहते नहीं, इतने साल मैंने इस किताब के बगैर गुजारे, अब मैं नहीं जी सकती। जैसे अब खाए ना तो कुछ अरसे बाद भूख ख़त्म हो जाती है, इसी तरह इस किताब से दूर रहे ना तो फिर इसकी तलब ख़त्म हो जाती है और ख़ुद को बदलने का एहसास शुरू हो जाता है। अगर आपको इस दौरे कुरान ने ये सोच भी दे दी है ना कि आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, आई नीड टू रिवाइज माई हैबिट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकवा का नुक्ता आगाज़ है। व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज्जिबीन, और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग झुठलाने वाले हैं, यानी सब नहीं मानते। ऐसे काफिरों के लिए यकीनन ये हसरत का सबब होगा, ये बिल्कुल यकीनी हक है। पस ए नबी क्या कीजिए, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह कीजिए। आप और मैं भी करें, सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम, पाक है अल्लाह और वही है जो सब कुछ मुझे आपको देता है। आप देखिए कि ये सब कुछ जो हम पढ़ चुके हैं ना, तो ये सारी चीज़ें कल क़यामत के दिन या तो हमारे हक़ में हुज्जत है या हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत है। हमें अल्लाह के इस पर लाख शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी में बता दिया। वहाँ जाके पता चलता कुरान भी कोई चीज़ थी पढ़ने की, हम तो सिर्फ बरकत की किताब समझते रहे, और कुरान भी कोई चीज़ थी जिसको टाइम दिया जाए, हम तो दुनिया की किताबों को ही वक्त देते रहे, और कुरान भी वो चीज़ थी जिस पर वक्त और माल और सेहत और स्किल्स लगे, तो हम कहते हाय अल्लाह कोई एक बंदा हमें बताता तो सही, फिर हम कितने अच्छे बन जाते। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे आपको जल्दी में ही सही, लेकिन ये तो बता दिया कि हमारा मालिक हमारा रब हमसे क्या चाहता है। तो इस शऊर के साथ इंशाल्लाह हम तिलावत सुनेंगे और साथ साथ दुआएं भी करें, पूरे पारों में, इन दोनों पारों में अपनी दुआएं मांगते जाएं, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम का बहुत जिक्र आ रहा है ना। तो एक हदीस सुन लीजिए, मुस्नद अहमद की रिवायत है 24856, इब्न अब्बास से रिवायत है, जहन्नुम में पीप और खून की वादियाँ बह रही होंगी। नहीं यकीन आता, तो ये पानी की नदियाँ और नाले कैसे बहते हैं, गट्टर भी तो बहते हैं ना, ये जो गट्टर है वो भी तो यही कुछ है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको बुरे अंजाम से बचा के रखे। तिलावत सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلوا إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم تعلم سب كويس برينجام سے بچائے.